आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो इत्तेहाद को अपनी रहनुमाई का बुनियादी उसूल बनाएं और इस समझ के साथ काम करें कि मुल्क की खिदमत ईश्वर की खिदमत है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने महाकुंभ के दौरान उनकी मुसलसल खिदमात के लिए सफाई सुथराई और सेहत की देखभाल से मुतालिक वर्करों और बस ड्राइवरों को इजाफी बोनस दिए जाने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आयुष शोबे के जायजे के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इस शोबे को मुस्तहकम करने की खातिर हुकूमत के अज़्म को दोहराया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और यूरोपियन कमीशन की सदर ने भारत यूरोप ताल्लुकात को फरोग देने के तौर तरीकों पर गौर खोज किया। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में सिलसिलेवार अहम इकदाम का आगाज किया जिनका मकसद बहरी बुनियादी ढांचे की जदीदकारी और आलमी तिजारत में उसकी मौजूदगी को मुस्तहकम करना है। और खवातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स की जीत के लिए 126 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजारों बरसों से महाकुंभ ने भारत के कौमी शऊर को मजबूत किया है जिसमें मुल्क और मुआशरे के लिए नई राहों की तरगीब दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बार इस तरह का महाकुंभ 144 साल के बाद आया है और इसने भारत के तरक्याती सफर में एक नए बाब के लिए पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये पैगाम विकसित भारत का है। जनाब मोदी ने इन ख्यालात का इजहार आज एक ब्लॉग में किया जिसे शेयर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक शहरी के तौर पर उनकी दुआ है कि हम अपने बुजुर्गों और संतों की याददाश्तों से नई तहरीक हासिल करें। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि इत्तेहाद को अपनी रहनुमाई का उसूल बनाएं और इस समझ के साथ काम करें कि मुल्क की खिदमत ईश्वर की खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क समेत हर खित्ते जात और फिरके के लोग महाकुंभ पहुंचे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि प्रयागराज में ये इत्तेहाद का महाकुंभ था जहां इस पवित्र मौके पर एक ही जगह और एक ही वक्त में 140 करोड़ भारतीयों के जज्बात यकजा हुए हैं। उन्होंने कहा कि संगम पर जज्बात का सैलाब उमड़ता रहा। जनाब मोदी ने कहा कि हर अकीदतमंद सिर्फ संगम में डुबकी लगाने के मकसद से ही यहां आया है जो पवित्र गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। उन्होंने कहा कि इससे हर अकीदतमंद का दिल जोशो खरोश तवानाई और एतमाद से भर गया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने हैरत से देखा कि किस तरह करोड़ों लोग प्रयागराज में नदियों के संगम पर एक साथ जमा हुए। वजीर आजम ने कहा कि इन लोगों के पास कोई रस्मी दावत नहीं थी और न ही यहाँ आने के लिए कोई पेशगी राबता था कि कब जाना है, फिर भी करोड़ों लोग खुद अपनी सहूलत से महाकुंभ पहुंचे और पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इत्तेहाद का ये महाकुंभ मुल्क को नए अजायम के साथ आगे बढ़ने की तहरीक देगा। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सफाई सुथराई और सेहत के उन वर्करों को 10,000 रुपए का इजाफी बोनस दिया जाएगा जिन्होंने महाकुंभ में मुसलसल खिदमात अंजाम दी हैं। वजीर आला ने आज प्रयागराज के महाकुंभ से मुंसलिक सफाई सुथराई सेहत बस ऑपरेटर्स और पुलिस के अमले के अफराद के साथ बातचीत की। जनाब योगी ने उन मुलाजमीन की इज्जत अफजाई भी की जिन्होंने महाकुंभ को कामयाबी से हमकिनार किया है। उन्होंने ऐलान किया कि सफाई सुथराई और सेहत से मुतालिक उन वर्करों को 16,000 रुपए महाना दिया जाएगा जिन्हें कम से कम उजरत नहीं मिल रही है। इस रकम को DBT के जरिए उनके खातों में मुंतकिल किया जाएगा।
एक अतिरिक्त देंगे 10,000 रुपए का इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉरपोरेशन बनने जा रहा है जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं।
महाकुंभ के दौरान रोडवेज की बस चलाने वाले बस ड्राइवरों को भी इजाफी 10,000 रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। जनाब योगी ने कहा कि वजीर आला के फंड की एक स्कीम के तहत कश्तीबानों को कश्तियां फराहम की जाएंगी। इसके लिए हर कश्तीबान का इंदराज किया जाएगा और वो 5,00,000 रुपए का तहफुजाती बीमा नीज 5,00,000 रुपए का सेहत बीमा भी हासिल कर सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयुष शोबे का जायजा लेने के लिए एक आला सतह मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में वजीर आजम ने इस शोबे की सेहत की देखभाल से मुतालिक एहतियात करने को फरोग देने, तिब्बी पेड़ पौधों की काश्त के जरिए देही मईशतों को मुस्तहकम करने और रिवायती अदविया में एक आयत के तौर पर मुल्क की आलमी हैसियत को फरोग देने पर जोर दिया। उन्होंने शोबे की लचक और नशोनुमा को ये कहते हुए उजागर किया कि दुनिया भर में इसकी कबूलियत में इजाफा हो रहा है, नीज ये पायदार तरक्की और रोजगार वजा करने के इम्कान रखता है। वजीर आजम ने इस बात का इयादा किया कि हुकूमत तहकीक और इख्तिरा पर तवज्जो मरकूज करने के साथ आयुष शोबे को मुस्तहकम करने के तई अहदबंद है। उन्होंने योग, कुदरती तरीके, इलाज और फार्मेसी शोबे के लिए जामे और मरबूत सेहत नीज मयारी तरीके कार को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस मीटिंग में सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मिश्रा और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज शाम यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लियन से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर शंकर ने कहा कि वो यूरोप के साथ भारत के राब्तों को नई तवानाई बख्शने के उनके नजरियात की सताइश करते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान भारतीय वुजरा और ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की वसी तर शमूलियत से भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात की अहमियत का इजहार होता है। मोहतरमा लियन ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के भारत के पहले दौरे पर आज दोपहर नई दिल्ली पहुंची हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल यूरोपीय यूनियन की सदर के साथ वफूद सतह की बातचीत करेंगे। हमारे नामा निगाह ने खबर दी है कि 27 यूरोपीय यूनियन कमिश्नरों में से 22 भारत के दो रोजा दौरे पर हैं। ये यूरोपीय कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का एक साथ भारत का अब तक का पहला दौरा है और गुज़िश्ता बरस में नए कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की जिम्मेदारी संभालने के बाद ही बैरून मुल्क का पहला दौरा है। इससे दो तरफा ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने की राह हमवार होगी। भारत और यूरोप 2004 से कलीदी शराकत दार हैं और मुख्तलिफ शोबों में उनके रिश्तों में वो सताई है और वो मुस्तहकम हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी शाहराहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी शाहराहों की वजारत के जरिए अहम इकदामात के एक सिलसिले का आगाज किया है। इनका मकसद भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे की जदीदकारी करना, इसकी आलमी तिजारत की मौजूदगी को मुस्तहकम करना और पायदारी को फरोग देना है। इन इकदामात का आगाज समुद्री शोबे के लिए मरकजी बजट में किए गए अहम ऐलानात के मुताबिक मुख्तलिफ इकदामात पर तबादला ख्याल करने के लिए आज मुंबई में मुतालिका फरीकैन की एक मीटिंग के दौरान किया गया। इन इकदामात में एक मुल्क एक बंदरगाह प्रोसेस ONOP शामिल है। इसका मकसद भारत की बड़ी बंदरगाहों में कार्रवाइयों को मेयारी और बाकायदा बनाना है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने नौजवानों को मसरूफ रखने और रेडियो की रसाई को खास तौर पर शहरी इलाकों में तौसी देने पर जोर दिया है। जनाब सहगल ने, जो गुजरात के एक रोजा दौरे पर थे, आज आकाशवाणी अहमदाबाद का दौरा किया। जनाब सहगल ने स्टेशन के स्टूडियोज, खबरों और प्रोग्राम यूनिटों की कार्रवाइयों का जायजा लिया।
अच्छी सुविधाएं रखी हुई हैं, स्टूडियो वगैरह अच्छे मेंटेन है। मैं एक बात इनसे कहा है कि हम सबको प्रयास करना है कि कैसे हम अधिक से अधिक श्रोताओं से जुड़े, और अधिक से अधिक श्रोताओं से जुड़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपने कार्यक्रमों को और रुचिकर बनाएं, विशेषकर युवा महिलाएं, इन सब जो हमारे समाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, उनके से संबंधित कार्यक्रम बना बना के उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने का कोशिश।
चेयरमैन ने वाजे किया कि वेब OTT प्लेटफॉर्म नौजवानों की जरूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तरह की तफरीही प्रोग्राम फराहम करने में एक इंतहाई अहम कदम है।
तो एक नया हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, एक नया प्रयोग किया है कि दुनिया में ऐसा ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, ऐसा ओटीटी ऐप और कोई नहीं है जिनमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वो हमारा जो है लेटेस्ट है। और उसके साथ साथ हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है दोनों में तकनीक का कैसे बेहतर उपयोग करके रीच कैसे बढ़ाई जाए और बेहतर साउंड क्वालिटी कैसे हम लोग देने का प्रयास करें।
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج یہ کہتے ہوئے سماجی اصلاح کار نانا جی دیشمکھ کی خدمات کی ستائش کی کہ بہت سے لوگ نہ مٹنے والے اثرات چھوڑتے ہیں اور کسی دور کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ جناب شاہ دیشمکھ کی 15ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مدھیہ پردیش کے شہر ستنا میں ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ آرٹ، سیاست، صنعت اور خدمات کے شعبے میں ان کی خدمات کی یاد دہانی کراتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ انہوں نے ان تمام شعبوں میں ایک لافانی اثر چھوڑا ہے۔
راجنیتی میں رہتے ہوئے سرو سیکرتی لانا بھی بڑا کٹھن، राजनीतिक उद्देश्यों से भी विरोध करना पड़ता है, परंतु इतने लंबे जीवन में किसी ने नाना जी का विरोध करने का साहस नहीं किया, विरोध करना उचित भी नहीं माना। एक प्रकार से कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के साथ संपर्क भी बनाया, वो क्षेत्र की स्वीकृति भी प्राप्त की और सम्मान भी प्राप्त। एक जीवन में इतना सारा करना मुझे लगता है बहुत कठिन।
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے معاصر چیلنجوں کا اختراعی حل فراہم کرنے میں ڈیزائن سیکٹر کے ذریعے ادا کیے گئے کلیدی رول کی ستائش کی۔ احمد آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن کے 44ویں جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ڈیزائن روایت اور جدت کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے، اس طرح کی آمیزش سے اختراع کو فروغ ملتا ہے اور ہمارے مالا مال ورثے کو تحفظ فراہم ہوتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے بھارت کے مالا مال ڈیزائن نظام اور خاص طور سے قدیم اور کم مشہور ڈیزائنوں کے بارے میں مطالعہ کرنے اور انہیں محفوظ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج ہندی کے استعمال کو اپنانے اور بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے زبان کو ایک ایسے سلسلے سے تعبیر کیا جو بھارت کے سماجی اور ثقافتی تانے بانے کو مربوط کرتا ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بات آج نئی دلی میں وزارت دفاع کی 2 سالہ ہندی میگزین سشکت بھارت کا پہلا شمارہ جاری کرتے ہوئے کہی۔ جناب سنگھ نے ہندی کو فروغ دینے کے تئیں وزارت دفاع کے سرکاری زبان کے محکمے کی ستائش کی۔ رکن پارلیمنٹ انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے نہ صرف وقت اور وسائل کی بچت ہوگی بلکہ اس سے مؤثر حکمرانی میں اضافہ اور اقتصادی استحکام کو فروغ حاصل ہوگا۔ آج پنجاب کے بھٹنڈا میں سینٹرل یونیورسٹی میں ایک ملک ایک چناؤ پر ایک خصوصی لیکچر دیتے ہوئے سابق کابینی وزیر نے کہا کہ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سربراہی میں اعلی سطحی کمیٹی نے لوک سبھا اور ریاستی اسمبلی کے چناؤ کے ساتھ کرائے جانے کی سفارش کی ہے۔
ایک دیش ایک چناؤ، اور اس دشا میں جو پورو راشٹرپتی رام ناتھ کووند جی کی ادھیکشتا میں ہائی لیول کمیٹی نے رپورٹ دی ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ اس کے کتنے لابھ۔ ایک ساتھ ودھان سبھا لوک سبھا کے چناؤ ہوں گے، 5 سال کا اس کا ٹینیور رہے گا، اور جب وہ چناؤ ہوں گے اس کے 100 دن کے اندر آپ کو میونسپل کارپوریشن کے ستھانیہ نکائے کے چناؤ کروانے پڑیں گے، تو آپ کو بار بار چناؤ کی استھتی سے بچے۔ جو خرچہ کینڈیڈیٹ کا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، کیمپین کا ہے، الیکشن کمیشن کا ہے، وہ سارا بچے گا۔
مردوں کی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہونے والا میچ مسلسل بارش کی وجہ سے کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی رد کر دیا گیا۔ 29 برس میں پہلی بار کسی آئی سی سی ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنے والا پاکستان ٹورنامنٹ میں کوئی بھی میچ جیتے بغیر اس سے باہر ہو گیا۔ بنگلہ دیش بھی ٹورنامنٹ میں کوئی میچ نہیں جیت سکا۔ خواتین پریمیئر لیگ کرکٹ کے تحت آج بنگلورو کے ایم چنسوامی اسٹیڈیم میں گجرات جائنٹس اور رائل چیلنجرس بنگلورو کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے۔ رائل چیلنجرس بنگلورو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گجرات جائنٹس کی جیت کے لیے 126 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل گجرات جائنٹس نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اتحاد کو اپنی رہنمائی کا بنیادی اصول بنائیں اور اس سمجھ کے ساتھ کام کریں کہ ملک کی خدمت ایشور کی خدمت ہے. اتر پردیش حکومت نے مہاکم کے دوران ان کی مسلسل خدمات کے لیے صفائی ستھرائی اور صحت کی دیکھ بھال سے متعلق ورکروں اور بس ڈرائیوروں کو اضافی بونس دیے جانے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم مودی نے آیوش شعبے کے جائزے کے لیے ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے اس شعبے کو مستحکم کرنے کی خاطر حکومت کے عزم کو دہرایا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور یورپی یونین کمیشن کی صدر نے بھارت یورپ تعلقات کو فروغ دینے کے طور طریقوں پر غور و خوض کیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.